गीता जी के आठवां श्लोक, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवदन्ति धनंजय उदासीन बदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु मया धक्येण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कुन्तेय जगद्वी परिवर्तते। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज के चरणों में वंदन। हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त आनंद वृंदावन के पूज्य महाराज जी, आप सभी भक्तजन, गिरीश भाई जी, माताओं, सभी लोग, गीता जी में भगवान ने इस बात का निरूपण करते हैं, साधना तो यही है कि आप जैसे हैं वैसे आप बताना अपने को, यही बड़ी साधना है। यदि आप में गुण है तो आप गुणवान हैं, और दोष है तो दोषवान है। गुण और दोष दोनों से युक्त जो है ना संसार है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी विकार। जहां जड़ और चेतन है, जहां गुण और दोष है, जहां धर्म और अधर्म है, जहां निंदा और प्रशंसा है, जहां मान और सम्मान है, यही संसार है। और संसार में रहते हुए संसार की जो माता है, संसार की जो मूल जो कारण है, वो अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है कि न विद्यते विद्या येषां ते अविद्या। जहां पर आत्मज्ञान नहीं होता उनका नाम ही अविद्या है। सीधे सीधे अर्थ यही है कि आप यदि धनबाद में गए, अब कोयला खदान में गए, तो वो लोग क्या करते हैं, नाक में जो है ना एक दीपक लगाते हैं, बिजली बल्ब, और नाक में बांधे रहेंगे, वो आगे प्रकाश देगा और जाएंगे भीतर में खदान में, और जहां घोर अंधकार होता है ना, अपने आप को आदमी देख नहीं सकता, कमरे में बैठे हैं, अंधकार है, तो आप अपने आप को नहीं देख सकेंगे। स्वयं को जहां व्यक्ति देखता है ना, उसका नाम है ज्ञान। प्रकाश के द्वारा, बिजली के द्वारा, सूर्य के रोशनी से आप अपने को देखते हैं और जानते हैं कि अहम देवदत्त, मैं देवदत्त हूं, अथवा सोनी हो, मोनी हो, मेरा नाम ये है, तो इसको कहते हैं ज्ञान। जहां आप अपने को भी देख नहीं पाते, दूसरे को देखने की बात दूर है, अपने को देख नहीं पाना वास्तविक में यही अज्ञान है, यही अविद्या है। इसलिए अविद्या के जो स्वरूप बताया जाता है, जहां पर विद्या नहीं है, असुरजा नामते लोका अंधेन तमसा वृदा तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनोजना। वो ऐसे लोक में जाता है जहां पर घोर अंधकार है। लेकिन भगवान कहते हैं जो अविद्या का जो स्वरूप है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशं प्रकृतेः वशात्। यहां प्रकृति शब्द का अर्थ ये है कि जो त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है ना, ये प्रकृति है। एक पशु को यदि बांधना होता है तो एक रस्सी के द्वारा पशु को बांध लेते हैं, हाथी को बांधा, घोड़ा को बांधा, तो एक बहुत बड़ा रस्सी है, रज्जू है, उसको आपने उसको बांध लिया। एक पशु को बांधने के लिए जितना हाथ लंबा और रस्सी रहेगा, वो गौ भैंस बकरा जो है ना वहां तक घूमेंगे वह। इसलिए ब्रह्म सूत्र में पशुआदिभिश्च अविशेषात ऐसे कहा आदि शंकराचार्य ने। चतुसूत्री में कहा गया है कि पशुआदिभिश्च अविशेषात, पशु में कोई विशेषता नहीं है, जहां तक रस्सी में बंधा हुआ है वहां तक घूमेगा। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई पशु में एक आदमी बंधा हुआ है तो आपके जो रस्सी है ना दिखाई दे रहा है, पशु का रस्सी, गौ भैंस बैल, लेकिन हम लोग ऐसे एक पशु हैं जो हम लोग की रस्सी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहां तक बंधा हुआ है? अमेरिका, रूस, चीन, बर्मा, थाईलैंड। अभी अभी हलो आया तो ये जो है ना तुरंत आंख के सामने बेटी आ गई, आपने बात किया और मन चला गया वहां पर, बंबई से सीधा पुणे चला गया, कलकत्ता चला गया। तो एक ऐसी रस्सी है, तो भगवान ने कहा कि जीव को बांधना है तो कैसे करें, पशु को तो एक रस्सी चाहिए। तो ईश्वर ने कहा कि इनको तीन रस्सी जोड़ो, और तीन रस्सी जो है ना हम लोग को जोड़ा जीव को, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, तीन रस्सी बनाया, और तीन रस्सी से बंधा हुआ जीवात्मा है, ये प्राणी तीन रस्सी से बंधा हुआ है। पशु जहां बंधा रहता है तो घास खाता है, पशु स्नान नहीं करते, शौच क्रिया करना है तो वहां करते हैं, और पशु हमेशा रस्सी में बंधा रहता है, ऐसे जीव ही पशु है। पश्यति इति पशु, जो पीछे की ओर देखता है ना उसको पशु कहते हैं व्याकरण में, पश्यति इति पशु, और जो आगे की ओर देखता है ना उसको मनुष्य कहते हैं, मनसा शिव्यति इति मनुष्य। निरुक्त ग्रंथ में यास्काचार्य ने लिखा है मनसा शिव्यति, जो मन से बुद्धि से जो चिंतन करता है उसको मनुष्य कहते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा, अनुभव ज्ञान के द्वारा जो बार बार चिंतन करता है उसको मनुष्य कहते हैं। इसलिए गांधारी ने कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर आना, लेकिन कृष्ण ने कहा कि कुछ पहनना पड़ेगा, इसका नाम है पशु का लक्षण। क्योंकि गांधारी कह रही है कि बेटा निर्वस्त्र होकर आना, क्योंकि ती मां है, मैं मां हूं, और मां के सामने बच्चा हमेशा ही छोटे से बड़ा तक निर्वस्त्र ही रहता है, और मां की दृष्टि होगी तो तू अजर अमर हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मां के पास जाना है, क्योंकि बुद्धि जो है ना आगे का विचार नहीं कर रही है, जो बुद्धि है पीछे की ओर जब जाती है उसको बोलते हैं पशु, पश्यति इति पशु, जो पीछे की ओर देखे, और जो आगे देखे ना उसको बोलते हैं मनुष्य, मनसा शिव्यति, जो मन के द्वारा बार बार चिंतन करता है उसको कहते हैं मनुष्य। इसलिए कभी कभी यहां गीता जी में ये बात को कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, ईश्वर अपने प्रकृति को जो है ना जो है स्वतंत्र में रखते हुए, वशीभूत करते हुए, ईश्वर की प्रकृति जो है ना छाया की तरह है, जैसे मनुष्य का शरीर है और छाया है, छाया से भिन्न मनुष्य का शरीर नहीं है, शरीर है तो आपकी छाया है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो असंग है, असंग होने पर भी उसकी एक प्रकृति है, एक शक्ति है, और वो शक्ति को शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। ये देखो, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ईश्वर की जो शक्ति है ना वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, वो उसके जो गुण धर्म है ना वो जड़ है। ईश्वर की जो शक्ति है माया शक्ति वो तो चेतन है, लेकिन माया शक्ति में होने वाले जो लक्षण जो है ना वो जड़ है। शक्ति आपके शक्ति जड़ हो जाएगा तो आप कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे। आपकी जो चेतना है ना वो जड़ नहीं है, लेकिन चेतना के द्वारा जो ओत प्रोत जो ये व्यवहार है वो जड़ है, ये जो विषय है वो जड़ हो सकता है। इसलिए वेदांत का कहना है प्रकृतिम सत्व गुण रजोगुण तमोगुण साम्यावस्था प्रकृति, ऐसे सांख्य दर्शन में कपिल जी ने प्रकृति का जब निरूपण किया तो उसने कहा कि सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इनकी जो साम्य अवस्था है ना वो प्रकृति है। इसका प्रमाण है अजामेका लोहिता शुक्ल कृष्णा बहुई प्रजा सृजमाना स्वरूपः, ये जो मंत्र है ना उसमें प्रमाण है मांडुक्य कारिका का। अजामेका लोहिता शुक्ल कृष्णा प्रजा बहुमाना स्वरूपः, तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति को मैं जो है ना अपने वश में करते हुए इमं भूतग्रामं अवशम कृष्णम प्रकृतिर वशात्, संपूर्ण भूत समुदाय को मैं रचना करता हूं। सरल ये श्लोक है आठवां, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि, अपनी प्रकृति को वश में करते हुए प्रकृति से उत्पन्न हुए जितने भी समग्र जगत है ये प्रकृति ही अपने आप जो है ना सबको जो है ना बनाती है। भूत ग्रामम इमम सदैव सौम्यम इदमग्र आशित एकमेवा द्वितीयम, उस ब्रह्म ने विचार किया मैं एक से बहुत बन जाऊं तो उसकी प्रकृति, उसने एक से बहुत बन जाए और एक से जब बहुत बनने की कल्पना की तस्माद वायु तस्माद आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु आपह, ऐसे उपनिषद में कहा कि उस परमेश्वर एक से बहुत बन गया। उसने कल्पना की तो बोले कि वो परमेश्वर के पास तो मन नहीं था, उसने कैसे कल्पना की। हमारे यहां एक माउंट आबू में एक महिषानंद गिरी जी महात्मा हुए हैं, बड़े अच्छे, अब तो नहीं है स्वामी जी, जो है बहुत बड़े विद्वान थे, निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर थे। कभी वो बंबई में कथा करने के लिए आए यहां, तो महाराज जी को एक ने कहा कि महाराज एक प्रश्न है, बोले बोलो क्या प्रश्न है। सुनते हैं कि शंकर भगवान ने समुद्र मंथन से एक भयंकर विष निकला हलाहल, और महादेव बाबा ने उस विष को पान किया, तो बंबई के समुद्र तट में बैठा कि गोवा में बैठा कि उड़ीसा में बैठा कहां बैठ करके वो पान किए, एक बड़ा शंका है ये। वो महादेव जी किस समुद्र तट पर बैठ करके वो विष को पिया ये थोड़ा आप बतावे। स्वामी जी ने कहा तेरे खोपड़ी में बैठ करके ही पिया। उसने कहा जो शिव है समुद्र तट पर, समुद्र से विष निकला और समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष को पान किया, तो शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। और आपका प्रश्न है कि वो कहां बैठ कर गए, किस समुद्र तट में बैठा, बंबई के समुद्र में कि गोवा में और कहां पर, तो महाराज जी ने कहा वो कहीं बैठ करके नहीं पिया, तुम्हारे जो खोपड़ी है मस्तिष्क है ना इस तट पर बैठ करके ही विष पिया। इसका मतलब अवजानंदी मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। ईश्वर को आप मनुष्य नहीं कह सकते, और मनुष्य इसलिए नहीं है कि उसके पास प्रकृति नहीं है, उसकी जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद स्वभाव है, और सतचिद आनंद की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की है। सत उसी का नाम है जिसका नाश नहीं होता, चैतन्य रूप में आप हैं और आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है। क्यों ऐसे है कि गौ भैंस, कभी गौ है भैंस है बकरा है कुत्ते की इतना सेवा होती है, ये लोग कभी हंसते हुए देखा नहीं होगा आप। गौ भी नहीं हंसता, भैंस भी नहीं हंसते, पशु भी नहीं हंसते। वो कभी पशु जो है ना हंसते नहीं है, उनका हंसना धर्म नहीं है। इसलिए नहीं हंसते कि उनके पास आनंदमय कोष होने पर भी आनंदमय कोष की अभिव्यक्ति नहीं है उनके पास। पंचकोश है ना, प्राण, मनोमय, अन्नमय, विज्ञानमय, आनंदमय। आनंदमय कोष उनके पास है। गौ जब घास खाती है तो ज्वाली करती है लेकिन हंस नहीं पाते। कुत्ता की सेवा होता है, हंस नहीं पाते। यदि वो लोग हंसेंगे तो आपको शंका होगा कि ये भूत है कि प्रेत है। लेकिन मनुष्य जो है ना हंसता है ना, मनुष्य हंसता है। क्यों हंसता है कि आनंदमय कोष की उपलब्धि आपके पास है, मनुष्य के पास। वो अन्य पशु में नहीं है। इसलिए आनंदमय कोष क्या करते हैं, तीन वस्तु देते हैं, मोद, प्रमोद और हर्ष। मोद माने प्रसन्नता, प्रमोद माने पूर्ण प्रसन्नता, हर्ष माने हृदय के अंतःकरण के एक पूर्ण जो आनंद की अभिव्यक्ति है उसको हर्ष कहते हैं। आज घर में बेटी आई और आप एयरपोर्ट में गए तो आप भी रोए, वो भी रोई, तो ये हर्ष है। उस हर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। सुदामा जी आए, कृष्ण को बड़ा अच्छा लगा। सुदामा जी की फटी लपटी धोती को देखा तो भगवान ने पीताम्बरी दिया द्वारका का। पहले कांटा भी था तो उसको भी निकाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी पर तक हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। उसने जो है ना अपने आंखों से भगवान रोने लगे। लेकिन जब ब्राह्मण पोरबंदर जाने लगा द्वारका से, द्वारका से पोरबंदर थोड़ी ही दूर है, पोरबंदर की जन्मभूमि है, पोरबंदर की निवासी एक सुदामा, जब वो जाने लगे तो कृष्ण ने कहा कि पीताम्बरी को रखो यहां। ये कथा है। सुदामा जी ने कहा महाराज कुछ तो है नहीं, ये क्या बात है, मांगा तो कुछ नहीं, मांगने आया लेकिन मांगा नहीं। भगवान ने कहा कि मित्र मांगने तो आया लेकिन मांगा नहीं। बोले क्यों, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, तुम्हारा ये प्रकृति है, ये स्वभाव है कि आप किसी को कुछ मांग नहीं सकते। भक्त कभी किसी को मांग नहीं सकता। तो उनके पत्नी ने कहा कि मांगना भगवान से, हम लोग दरिद्र हैं। तो देवी जी को देख करके सुदामा जी ने कहा कि देखो मांगना बनता नहीं है। बोले क्यों नहीं बनता, कृष्ण मेरे भगवान हैं। भक्त जो है ना भगवान को कुछ मांगता नहीं है। यदि भक्त भगवान को मांगता है तो वो भक्त नहीं है फिर, क्योंकि उसके इष्ट देव जो है ना सब जानता है कि उसको क्या चाहिए। इसलिए भक्त जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। मैं भक्त हूं तो भगवान से मांग नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं, आप तो मित्र हैं तो मित्र होकर के मांगो। बोले मित्र जो है ना दूसरे मित्र से, अपने मित्र से मांग नहीं सकता। मित्र मित्र को मांग नहीं सकता, क्योंकि अपना जो मित्र सुखी होगा तो हम भी सुखी हैं, वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं। इसलिए मित्र मित्र से मांग नहीं सकता। बोले कि सुदामा जी आप तो प्रजा हैं, द्वारकाधीश राजा हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि प्रजा राजा से मांग नहीं सकता। वो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के दुख को और सुख को देखे, और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को आशीर्वाद देकर के आए। पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्। तब उनके पत्नी ने कहा कि महाराज आप फिर द्वारकाधीश के यहां जाओगे तो क्या करने जाओगे। तो भागवत जी में आया है, अयम तो परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। बोले ये परम लाभ तो ये है कि उत्तम श्लोक नारायण का दर्शन होगा, बस ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात का निरूपण करते हैं कि जो अविद्या है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, संसार को मैंने बनाया, प्रकृति को लेकर के बनाया। यहां प्रकृति का अर्थ भाष्यकार ने लिखा है कि त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है ना, उसको ग्रहण करना है। यहां अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि सदैव सौम्यम इदम अग्र आसित एकमेवा अद्वितीयम। वो ब्रह्म एक था, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित था। ये अद्वितीयम का अर्थ है वो एक है, उसके जैसे कोई नहीं है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म है। तो यहां पर ये शंका है कि उसके पास तो मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, फिर ये संसार को बनाया कैसे? तो मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने एक जगह पर लिखे हैं, आप्त कामस्य कास्प्रिहा, ऐसे कहा। जो आप्त काम होता है ना, वो संसार को बनाया नहीं बनाया उसके ऊपर आप छोड़ दो, क्योंकि संसार को परमात्मा ने बनाया और परमात्मा साक्षी बनकर के बनाया, इसके ऊपर वो लिखा गया है कि कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो कर्म का अध्यक्ष भी है, साक्षी भी है, निर्गुण भी है। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं प्रकृति तम वैष्णवी शक्ति अनंत विरजा विश्वस्य बीजम परमासी माया सप्तशती में आया। ये एक वैष्णवी शक्ति है, वो शक्ति जो है ना तीन प्रकार का है, स्वजन मोहिनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, त्रिगुणात्मिका शक्ति। शक्ति तीन है। अपने लोगों को जो मोहित करने की जो शक्ति है ना, उसको स्वजन मोहिनी कहते हैं। स्वजन मोहिनी अपने ही लोगों को मोहित करने वाली। जसोदा जान रही है कि कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई और जब मुंह का दर्शन किया तो अपने ही मां को मोहित कर दिया उन्होंने। इसको बोलते हैं स्वजन मोहिनी, अपने ही लोगों को जो मोहित करने की शक्ति। भस्मासुर ने कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखे हैं उसकी भस्म हो जाए, लेकिन असुर ने ये वरदान नहीं मांगा कि मेरे सिर को छोड़ करके, उसने ये नहीं ने कहा हाथ रखें नाश हो जाए। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, उसने कहा कि महादेव जी को ही पहले भस्म कर दें तो अच्छा है। और शंकर को जब भस्म करने के लिए चला तो सामने मोहिनी प्रकट हो गई। मोहिनी को देखा तो उसने कहा कि देखो, मुझे देख करके लगता है कि तुम्हें कोई रत्न चाहिए, पुरुष चाहिए। तो मोहिनी ने कहा कि विवाह तो करने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन नाच गाना में प्रवीण हो कि नहीं हो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जब नृत्य गान उसने करने लगा भस्मासुर, तो उसको ये भूल गया कि मेरा जो हाथ है मेरे सिर पर यदि जाएगा तो मैं भी भस्म हो जाऊं। इस जो शक्ति है ना, इसको बोलते हैं ये भगवान की वैष्णवी शक्ति। जो ईश्वर की जो वैष्णवी शक्ति है ना, वो असुरों को मोहित करती है, और सत्वगुणी पुरुष को स्वजन मोहिनी शक्ति मोहित करती है। ये अपने ही जनों को मोहित करने की जो शक्ति है, वसुदेव जी देख रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ है, बालक है। कंस ने कहा कि वसुदेव, आठवां गर्भ तो बालक होना चाहिए था, और आप सत्यवादी हैं, आप सही बोलो कि बालक हुआ कि बालिका हुआ। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि बालक है कि बालिका है, मैंने देखा अपने हाथों में कि ये बालक है, लेकिन मुझे ज्ञान तब हुआ जब बालिका जो है ना देवकी की गोद में आई, शक्ति जब आई, जब उस महाशक्ति आई तब उसको पता चला कि ये बालिका का जन्म हुआ है। वसुदेव जानने पर भी ईश्वर की वो शक्ति ऐसे मोहित कर दिया कि वो कुछ बोल नहीं पाए। तो कंस को लगा कि ये विष्णु माया की महिमा है, इसलिए एक शक्ति तो ये है कि जो स्वजन मोहिनी शक्ति है, परमात्मा को कोई यदि बांधता है तो उसकी माया ही बांधता है, ईश्वर को यदि कोई रुलाता है तो उसके माया ही रुलाती है। जब भी ईश्वर को कोई रुलाया तो उसके माया ही रुलाए, इसलिए एक शक्ति तो ऐसे शास्त्रों में आया है कि जो स्वजन मोहिनी शक्ति, अपने जनों को मोहित करना। भगवान अपने जनों को मोहित करते हैं, जैसे आप कथा सुनते हैं कि जसोदा जी दौड़ा रही है और भगवान भाग रहे हैं और कह भी रहे हैं और दो अंगुली कम हो जा रहे हैं, तो ये जो माया है, ये जो लीला है, ये भगवान अपने ही माया से स्वयं बंध जाते हैं और बंधने पर भी असंग भाव से लीला करते हैं, ये इसका मतलब। गरुड़ आपका है, गरुड़ ने राम जी को दर्शन किया तो उसको मोह हो गया, उसने कहा यदि भगवान होते यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे, इनका स्मरण मात्र से दुख नाश हो जाता है। और दर्शन किया, दर्शन से हो गया मोह, और इस मोह का नाश करने के लिए महादेव के पास जब गए तो महादेव जी ने कहा कि देखो बहुकाल करिय सतसंग तब होइ नाथ दृढ़ मोह भंगा। सत्संग बहुत समय तक करो, एक साल नहीं, दो साल नहीं, इसलिए आपके यहां ये कथा जो चल रही है कई वर्षों से चल रही है, 50 सालों से। स्वामी अखंडानंद आश्रम में भी सत्संग वृंदावन में पूरा चलता है, 35 से ज्यादा साल हो गया, 35 वर्ष से। कई जगह ऐसे भारत में है जहां नित्य कथा होती है, और कथा के श्रवण करने वाले साधक जब आते हैं तो कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं गए होंगे तो उन्होंने लिखा विनय पत्रिका में, उन्होंने ये कहा कि राम कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तो ये सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे कहा। जब द्रवे दीन दयाल तब साधु संगत पाइए, ये विनय पत्रिका की वाणी है। जब उस परमात्मा की अनुग्रह होता है तो सत्संग सुनने को मिलता है। यहां तक बताया है कि एक घड़ी एक घंटा श्रवण करें, बोले संभव नहीं है, आधो घड़ी आधा घंटा वो भी संभव नहीं है, आधो की आधो पुनिया 15 मिनट बोले वो भी संभव नहीं है। तो कहा कि फिर संभव किसका है, बोले सत्संग जहां होता है ना, दूर से प्रणाम करो ये संभव है कि नहीं है, बोले ये तो संभव है। दूर से प्रणाम कर देने से जो फल मिलता है, आपको जो है नित्य सत्संग सुनने पर जो फल मिलता है, उतना भी फल उस व्यक्ति को मिलता है। और यदि वो निंदा करता है, लोग निंदा भी करते हैं, तो वो निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है तो शास्त्र कहता है कि उसको उतना पाप लगता है जितना एक गोवध और हरिहर निंदा करने पर जो पाप लगता है, इतना पाप लगता है। इसलिए ये कहते हैं जब द्रवे दीन दयाल साधु संगत पाइए, जब भगवान की कृपा होता है तो सत्संग की ये श्रवण होता है। इसलिए गीताकार ने कहा प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्यो विश्री जामी पुनः पुनः, मैं प्रकृति को आश्रय लेता हूं, स्वजन मोहिनी माया, वैष्णवी माया, और एक माया है त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुणात्मिका माया क्या करती है, संसार को बनाती है, वो ईश्वर को बंधन में नहीं डालती, क्योंकि जो परमात्मा है ना, वो न सत्वगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है। सत्वम विशुद्धम तव धाम शांतम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने कहा कि महाराज सत्वम विशुद्धम तव धाम शांतम, आप परम सत्व है, भगवान सत्वगुणी नहीं है, रजोगुणी नहीं है और तमोगुणी नहीं है। इसका प्रमाण गीता जी में आया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो निर्जोग खेम आत्मवान। त्रैगुण्य से रहित हो जाओ। सामान्य जो सत्वगुण है ना, ये सत्वगुण ईश्वर में नहीं रहता, इसलिए सत्वगुण की व्याख्या जब की गई है गीता जी में तो पहले अभयम शब्द का प्रयोग किया गया। अभयम, अभयम सत्वम संशुद्धि ऐसे बताया, भय से रहित हो जाओ। द्वैत जगत में भय होता है, अद्वैत में भय नहीं होता। सांप को देखने पर भय होता है क्योंकि सांप में विष है और विष से मृत्यु है, इसी प्रकार से ये सांप अज्ञान है, अज्ञान में एक बहुत भयंकर विष है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भयंकर विष है। इस विष का नाश केवल परमात्मा की कथा के माध्यम से हो सकता है, इसलिए भगवान का कहना है कि त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है ना, वो संसार को बनाती है। और ये त्रिगुणात्मिका शक्ति को लेकर के नचमामतानि कर्माणि निवदनन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम अशक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं कि नच माम तानि कर्माणि, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से होने वाले जितने कर्म, आपने यज्ञ किया, दान किया, आपने तपस्या की, ये सब सत्वगुणी है। जितने भी सत्वगुणी होंगे वो आपको ज्ञान देंगे, स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराएंगे, रजोगुणी भोग विलास को देंगे, तमोगुण अज्ञान मोह को देंगे। इसलिए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये जो विषय है, भगवान कहते हैं कि नमाम तानि कर्माणि निवदनंदी, ये सारे कर्म मुझे बंधन में नहीं देते। धनंजय धनांजयति इति धनंजय, धनंजय एक शब्द है, धनांजयति अर्जुन का एक संबोधन है धनंजय, जो धन के द्वारा सबको जीता, धनांजयति धनंजय। आपके पास लौकिक धन है जी, सोना चांदी हीरा नीला मोती माणिक ये सब है, लेकिन आध्यात्मिक धन क्या है? आध्यात्मिक धन दो विषय से प्रारंभ होता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिन, विद्या और विनय। आध्यात्मिक जो धन है ना, अध्यात्म विद्या और साथ में विनय, गुरु और संत को देख करके प्रणाम करना, अपने गुण को बखान नहीं करना, ये सबसे बड़ा जीवन में साधना बताया, ये विनय। इसलिए जो विनय होता है, जो विद्या होते हैं, ये किसके पास था? ये अर्जुन के पास। अर्जुन कभी भी अपने महिमा को नहीं बोलते थे, इसलिए भगवान कहते तो धनंजय है, धनांजयति, धन के द्वारा राजस्व यज्ञों को कराने वाले अर्जुन, एक बहुत बड़ा ये धन था। अर्जुन के पास एक संयम था कि वो जीवन में, उनका ये संयम था कि द्रौपदी उनकी पत्नी थी, पांच पांडव के साथ जब वो रमण करती थी तो एक महीने में वो अग्नि में स्नान करती थी, और अग्नि में स्नान करने के बाद जो है ना, वो फिर पांडव युधिष्ठिर भीम नकुल जो भी है, तो इतना बड़ा संयमी जो है ना, ये धनंजय था। उर्वशी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई हूं, देवराज ने भेजा है, और स्वर्ग लोक में जब अर्जुन गए तो उर्वशी को देखा, उन्होंने कहा कि देखो हमारे वंश में, चंद्र वंश में पुरुरवा हुआ, अब पुरुरवा की पत्नी उर्वशी आप हैं, आप मेरी मां हैं, और मां मेरे घर में आया तो उनको सम्मान है, उसको बंधन है, लेकिन तुम्हारे मन में काम भावना नहीं होना चाहिए, आप हमारी मां हैं, चंद्रवंशी के मां। तो भगवान श्री कृष्ण ये सब विषय जानते थे। उन्होंने कहा कि इसलिए तो धनंजय है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य और त्याग रूपी धन से संपूर्ण संसार को जीत लिया वो धनंजय है। धनांजयति, धन का दो अर्थ है, लौकिक धन और आध्यात्मिक धन। आपके पास आसुरी संपदा है, हीरा नीला मोती माणिक्य पैसा, ये क्या है? ये आसुरी संपदा। और देवी संपदा सत्संग स्वाध्याय भजन दान दया, ये जितने सत्व गुण है ना, ये देवी संपदा है। संपदा दो माना गया है, आसुरी संपदा और देवी संपदा। आपके पास धन है तो इसको आसुरी संपदा कहा गया है, लेकिन आपके पास धन होने पर एक देवी संपदा है। धन अपने स्थान पर है, धनाप धर्म, धन हो तो धर्म करे, दान करे, नाश होगा भोग होगा, धनस्य त्रेधा गति। धन की तीन गति है, दान नाश और भोग। यदि सत्कर्म करते हैं तो दान है, नहीं करते हैं तो नाश हो जाएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा रोग। और भोग ज्यादा करते हैं बिना जितेंद्रिय के तो भोगे रोग भयम, भोग होगा तो रोग हो जाएगा, और ज्यादा रोग हुआ तो बड़ा विचित्र हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निरपालात भयम। अर्जुन को इसलिए धनंजय कहा गया, धनांजयति, जिन्होंने दोनों धन को जीता था, जिन्होंने दोनों धन आध्यात्मिक धन के द्वारा इंद्रियों को जीता था, मन को जीता था, और ये धन के द्वारा धर्म को जीता था। आपके पास यदि धन है तो धर्म को जीतना है, क्योंकि धन के द्वारा ही धर्म न होगा, धन यदि नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। इसलिए धनांजयति, हे धनंजय, न कर्माणि निबद्धन्ति, मुझे कर्म जो है ना बंधन में नहीं लेते। मैंने कल ही आपको बताया था कर्म आपके पास कितने हैं, पांच। ऐसे तो गीता जी में दो कर्म का विधान है, एक विधि कर्म एक निषेध कर्म, लेकिन उसके साथ तीन और है। विधि के साथ निषेध है, प्रायश्चित कर्म, निमित्त कर्म और नित्य कर्म। ये नित्य कर्म क्या है कि सुबह उठ करके माता पिता को वंदन करे, गुरु को प्रणाम करे, ये नित्य कर्म है। हो सके कैलाश के मंडलेश्वर जी तो बड़े जोर देते थे कि देवी को चाहिए कि उसके पति को सुबह मिले तो उसके चरण को धोए और प्रणाम करके उसके पानी को जो है ना ले, और उस प्रसाद के रूप में उसको ले। तो एक देवी कहाँ थी, उसने कहा दिल्ली में कि महाराज आप बोलते हैं कि पति को प्रणाम करना चाहिए, इसकी सकल सूरत तो ठीक होना चाहिए ना, ये देखने लायक ही नहीं, इसके मुंह देखने लायक ही नहीं है, काला है कैसे है। तो स्वामी जी ने पूछा ये कौन है आपका, बोले है तो हस्बैंड है मेरा, उसने कहा, लेकिन इसकी सकल सूरत तो ठीक होना चाहिए ना। तो एक देवी कहती है जब ये सोए रहता है ना तो कभी कभी मैं इसको प्रणाम कर लेती हूं, जगने पर नहीं। तो महाराज ने कहा कि धन्य है संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जगदम्बा जी है, और भगवान ने कहा कि ये राम है मम इष्ट देव रघुवीरा। शंकर जी के कहने पर जब देवी नहीं मानी और सीता रूप का धारण किया और परीक्षा करने के लिए चली, तो एक रामायणी ने कहा कि देखो इसलिए कि सत्संग में बच्चे ना आवे लड़का ना आवे काम चलेगा, लेकिन धर्म पत्नी को सत्संग में जरूर लाओ, क्योंकि संग सती महादेव जी अपने पत्नी को लेकर के कथा सुन देते। इससे ये सिद्ध हो गया कि पति ही परमेश्वर है, और आप धर्म पत्नी है। पत्नी के स्थान पर एक विशेषण है धर्म पत्नी। धर्म शब्द वहां पर लगा है, धर्म पुरुष नहीं है। पुरुष तो बीड़ी खाएगा, भांग खाएगा, गांजा करेगा, क्या क्या करेगा, लेकिन यदि देवी सही है, शुद्ध है, सात्विक है। इसलिए वो महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बोलते तो ठीक है, हमारे गुरु जी हम प्रणाम तो कर सकती हैं, लेकिन प्रणाम करने का मन इसलिए नहीं होता, इनका सकल सूरत इनके सब विचार आचार को देखने पर लगता है कि क्या प्रणाम करें। महाराज ने कुछ नहीं कहा, ये आपकी प्रकृति है। नचमाम तानि कर्माणि निवदन्ति धनंजय, जितने भी कर्म होते हैं नित्य कर्म, सुबह उठ करके माता पिता गुरु को वंदन करे, संध्या के समय में नित्य देवता की पूजा करे, प्रातःकाल उठे तो भूमि को वंदन करे, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं प्रत्यवाय दोषो भवति, प्रत्यवाय दोष होता है। यदि वो कर्म आप नहीं करेंगे तो आपके पास चार वस्तु है जो आपका है, अपना है, वो है आयु, जस, विद्या और धन। ये चार वस्तु है। ये चार वस्तु को शास्त्रों में प्रारब्ध कहते हैं। आयु, आपको 100 साल रहना है। विद्या, आपके पास जस है और धन है। यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो ये चारों का नाश हो सकता है, थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा चला जाता है। इसलिए प्रत्यवाय दोषो भवति, नित्य कर्म करना चाहिए। एक नैमित्तिक कर्म है जो निमित्त मान करके कर्म होता है, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति। एक प्रायश्चित कर्म है कि यदि अपराध हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया, दासोयम इतिमा मत्वा क्षमस्व परमेश्वर, मेरे जीवन में बड़ा अपराध हो गया है। इसलिए पांच कर्म जो है ना शास्त्रों में कहा गया है, इसको काम्य कर्म कहते हैं। काम्य कर्म, कामना को लेकर के जो कर्म होते हैं वो शास्त्रों में काम्य कर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं कोई कर्म मुझे नहीं बांधता, न च माम कर्माणि तानि निवदन्ति हे धनंजय। हे धनंजय, जितने भी विधि निषेध कर्म हैं मुझे बंधन में नहीं आते, मुझे नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? उदासीनवत, मैं उदासीन नहीं हूं। उदासीन के समान, उत का अर्थ होता है पास में, आसीन का अर्थ होता है बैठना। एक अर्थ तो यह है कि उदासीन का अर्थ यह है कि मैं बिल्कुल उदासीन हूं, मैं ईश्वर के पास में बैठा हूं। आप किसके पास में बैठे हैं? राजा साहब के पास एक संत आया तो संत को देखा तो गेट के चपरासी ने कहा कि राजा जी अभी ध्यान में हैं। महाराज ने कहा कि मुझे अभी अभी दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारी राजा बॉम्बे देवी के पास जो है ना, मुंबा देवी के पास जो है ना, चप्पल खरीदने गया है, अभी जूता की दुकान में है। वो बोले कि 12 बजे तक पूजा करता है, गए कब? मैं तो गेट में हूं। जब उठे तो चपरासी ने पूछा कि महाराज आप दिन के 9 बजे कहीं गए थे क्या? संत ने कहा गया था, इनको पूछो आप। तो उसने कहा कि मेरा मन जो है ना दुकान चला गया था, जहां जूता चप्पल की दुकान था वो मैं चला गया और वहां मैं घूम रहा था। आप कहां बैठे हैं इसका महत्व है, आप कुर्सी में बैठे हैं इसका महत्व नहीं है। आपका मन भगवान के पास बैठा है या संसार के पास बैठा है इसका महत्व है जी। ईश्वर के चरण में आप बैठे हैं और व्यवहार करते हैं तो आप बड़े उदासीन हैं, आप सत्संगी हैं, लेकिन ईश्वर के पास बैठ करके भी मन यदि नहीं है तो शास्त्र कहता है संसारी है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहम्यहम्। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। क्यों करते हैं? नित्य अभियुक्तानाम, नित्य मेरी चरणों में बैठा है। उदासीनवत, उदासीन के समान मैं रहता हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं उदासीन का दो अर्थ है, गुरु नानक देव की जो बेटा श्रीचंद्र भगवान ये जब आए तो इन्होंने तो उदासीन संप्रदाय खड़ा किया, नानक देव की सुपुत्र श्रीचंद्र भगवान जिस उदासीन संप्रदाय में बड़े बड़े संत हुए, वृंदावन के गुरु शरणानंद के जो परंपरा में है उनमें हरिनाम दास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, हरिनाम दास जी महाराज जो है ना बड़े सिद्ध महात्मा, उस परंपरा में गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज जी बहुत बड़े महापुरुष, उन्हीं की मेरी कथा होती है, लेकिन वो इतना बड़े सिद्ध महापुरुष थे गुरु गंगेश्वरानंद जी कि अद्भुत था वो। इसलिए इसका मतलब क्या है, उदासीन आपका कुछ है ही नहीं, आप उदासीन तो हैं, आपके पास क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। जब जाना है तो कुछ ले करके नहीं जाएंगे, इसको जानना ही, इसको संस्कृत में उदासीन कर दें। आप जब आए तब भी कुछ नहीं लाए और शायद जब जाएंगे तब भी लेकर के नहीं जाएंगे। जब तू आया जग में वह हंसा तुम रोए, ऐसे करनी कर चले तुम हंसे जग रोए। इसलिए आप उदासीन है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उदासीन कहा गया है। भगवान संसार जब बनाया तो भगवान के पास कुछ नहीं है, बोले कि तुम्हारे पास क्या है, बोले कुछ नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं भक्तों ने, संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, वल्लभाचार्य ने कहा कि आपके पास क्या नहीं है, बोले मेरे ससुर का नाम वरुण देवता है, समुद्र नित्य गर्जना करता है समुद्र, और ऐसे ससुर है कि जो रोज चिल्लाता है समुद्र है? वो गर्जना ही करता है। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, बोले ससुर तो ठीक है थोड़ा मोड़ा, लेकिन देवी ठीक नहीं है उन्होंने कहा भगवान ने। ये लक्ष्मी वैकुंठ में नहीं रहती है, 12 महीना घूमती रहती है, इसलिए इनका नाम चंचला है, सभी के घर में जाती है, चंडालों से लेकर के ब्राह्मण तक घूमती है। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, किम देयमस्ति भवते जगदीश्वरायो, बोले प्रभु आपको क्या दें। तो कहा, भगवान ने कहा कि मुझे आप क्या देंगे, मेरे पास तो सब है, समुद्र मेरी ससुर है, पत्नी मेरे लक्ष्मी है, रिद्धि सिद्धि मेरे सेवक हैं, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास नहीं है ऐसे लगता है। तो भगवान ने कहा कि एक वस्तु मेरे पास नहीं है, आभीर बाम नयन हितमान शाय, ये जो गोपी है ना मेरे मन को चुरा लिया है, उसने कहा आभीर बाम नयन, ये जितने गोपी हैं कृष्ण के मन को जो है ना वो लोग चुरा लिए, इसलिए दत्तम मनो में यदुपते कृपया गृहण, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मन को दे। भगवान ने कहा सब दे सकते हो लेकिन मन यदि दे देते हो तो मन ही आपका संसार है, मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो, यदि मन यदि आप भगवान को देते हैं तो आप क्या है, सब आपके पास होने पर भी आप उदासीन है, ये इसका मतलब। मन आपके पास नहीं है, मन किसके पास है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर को मन देने का मतलब है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा आत्मा का चिंतन करे, उस ईश्वर का चिंतन करे, इसलिए भगवान कहते हैं उदासीनवत आसीनम, उदासीन की तरह मैं रहता हूं। नदी में खड़ा है आदमी, मुर्दा जा रहा है, पानी जा रहा है, जल जा रहा है, न रोता है न हंसता है, इसलिए असक्तम तेषु कर्मसु, मैं वो सारे कर्म में असक्त हूं, अनासक्त हूं। और जब अनासक्त भाव हो जाता है यानी कर्म करने पर भी कर्म के फल की इच्छा नहीं है, ये इसका मतलब। आप अपने कर्म करते हुए कर्म का जो फल है भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हैं, यही सोचते हैं कि सब तेरा है, यहां पर मेरा कुछ नहीं है। तो कर्म में जो फल में इच्छा और इच्छा में जो अहम बुद्धि है ना, जब अहंकार बुद्धि आ जाता है तो उसी समय, इसलिए शास्त्रों में बार बार आप कथा सुनते हैं ना कि नारद जी ने कहा, गंगा जी ने प्रणाम किया, बोले देवर्षि जी आप ये घूम रहे हैं, आप स्नान नहीं करते। तो भगवान नारद जी ने कहा कि गंगा ऐसे है, तव दर्शनात मुक्ति किम न जब स्नानजम फलम, तुम्हारे दर्शन से जब मोक्ष हो सकता है तो स्नान करने पर क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दर्शन मात्र से ही मोक्ष है, इसका मतलब कि जिस समय ये संसार में आप हैं, आप संसार में हैं, संसार आपका है, ऐसे सोचते हैं। और संसार को किसने बनाया, मन ने, मन चंचल है, इस मन कहां जाएगा, भगवान के चरणारविंद में। जब भगवान के चरणारविंद में मन को दे देते हैं तो आप उदासीन हैं, आपके पास कुछ नहीं है, असक्त हैं, इसलिए कर्म का बंधन आपको नहीं होगा, ऐसे भगवान ने यहां पर कहा। जैसे कृष्ण को नहीं हुआ, कृष्ण भगवान कर्म में एक ये बंधन नहीं है। गीता जी में कई उदाहरण है, नवाम कर्माणि लिपन्ति न में कर्म फलेष्प्रिया, कर्म मुझे बंधन में इसलिए नहीं देते कि जो है ना, मैं कर्म फल की इच्छा नहीं करता। संसार ईश्वर ने जो बनाया है ना, वो कोई बंधन का कारण नहीं है। संसार अपने स्थान पर है लेकिन आप संसारी नहीं है, यही इसका मतलब है। आप जो है परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी आप हैं, यही भाव रखना है। पंचदशी में उठाया है कि संसार कोई बंधन का कारण नहीं है, हम जब संसार बनाते हैं तो बंधन का कारण है। ईश्वर का संसार तो हमेशा सत्य है, यही भाव रखना चाहिए। इसलिए उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए मैं बंधाय मान्य हूं, ऐसे भगवान ने कहा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। बोले बांके बिहारी।